ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। तो हमने कल अम्बरीश महाराज का वंशज और वो शुद्ध भक्त होने के नाते परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पृच्छा करते हैं कि मुझे वो अनैवेदिक एकांतिक भक्त अम्बरीश की कथा सुनाइए। तो अम्बरीश महाराज ये सारे पृथ्वी के मालिक थे और भक्त भगवान और साधु में वो परम भाव देखते थे, भक्ति भाव से देखते थे। इसीलिए वो सारा जगत लोष्टवत समझते थे, जगत तुच्छ है और राज्य लक्ष्मी भी उनकी अव्यय थी और सब कुछ ऐश्वर्य युक्त था, श्री युक्त था, सब कुछ राज्य में परिपूर्ण, फिर भी राज्य को लोष्टवत समझते थे, मिट्टी की तरह नाशवंत। तो बड़े एकांतिक भक्त थे और उन्होंने अपना सारा शरीर मन बुद्धि अहंकार श्री कृष्ण की सेवा में लगाया था। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादसु श्रुतिम चकर अच्युत सतकथोदये। यहाँ तक हमने कल कथा सुनी और आगे मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो। मुकुंद लिंग, मुकुंद का स्वरूप, मुकुंद की मूर्ति लिंग, मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो, अपनी दृशो आंखें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करने में हमेशा लगाए रखते थे। भगवान की मूर्ति खुद भगवान है, कृष्ण की मूर्ति में और कृष्ण में कोई भेद नहीं। आप जो भी सेवा करोगे मूर्ति को वो श्री कृष्ण को पहुंचेगी। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि पोस्ट से ऑथराइज बॉक्स हो और उसके बाजू में अनऑथराइज, पोस्ट ऑफिस से ऑथराइज नहीं है वैसा बॉक्स होगा, तो आप ऑथराइज बॉक्स में, टपाल पेटी बोलते हैं, तो वो ऑथराइज बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में खत डालोगे तो उनके एड्रेसी, उनको जिसने अपने एड्रेस किया है, जिसका पता लिखा है, उनको निश्चिंत रूप से मिलेगा खत। उसी तरह भगवान के लिंग, भगवान श्री कृष्ण के लिंग मूर्ति ये गुरु परंपरा से ऑथोराइज बॉक्स है, ऑथोराइज मुक्ति मूर्ति है। तो ये मूर्ति की सेवा करने से वो सेवा डायरेक्ट श्री कृष्ण को मिलेगी। ऑथोराइज किससे ऑथोराइज मूर्ति है? सारी आचार्यों की परंपरा, सब गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, ऑल द वे ब्रह्मा टू कृष्ण, इन सब ये सब प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये मनुष्य अपने चर्म चक्षु से, अपनी जड़ इंद्रियों से आपका अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए आप ही जड़ से जड़ सा बन जाओ, मूर्तिमंत हो जाओ, ताकि ये आपकी सेवा में लगे। तो ये ऑथोराइज बॉक्स, श्री कृष्ण की ऑथोराइज मूर्ति, और ये मूर्ति की सेवा डायरेक्ट श्री कृष्ण को मिलेगी। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, मूर्ति के दर्शन करोगे तो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। अर्चे विष्णु शिलाभीर गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि स नारकी सह। भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह को जो पाषाण पत्थर पित्तल मानता है, उनकी बुद्धि हेलिस मेंटालिटी, उनकी बुद्धि नारकी बुद्धि है। जो गुरु को सामान्य मनुष्य समझता है, उनकी बुद्धि नारकी बुद्धि है। जो वैष्णवों को कोई एक जाति का वैष्णव है ऐसा समझते हैं, उनकी बुद्धि नारकी है। अर्चे विष्णु शिलाभीर, विष्णु की अर्च विग्रह को शिला मानना, गुरुसु नरमति गुरु को सामान्य मनुष्य समझना, गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि सा नारकी सह। वैष्णवों की जाति सब जाति से ऊपर, ब्राह्मण से भी ऊपर, ऋषि मुनियों से भी ऊपर। क्यों? कि वैष्णव श्री कृष्ण में स्थित रहते हुए श्री कृष्ण में तन्मयता प्राप्त कर लेता है, वो दिव्यता प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास नहीं रहता, धर्म से ऊपर उठ जाता है। इसलिए वैष्णवों की जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। तो मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, आंखें मुकुंद के श्री विग्रह में दर्शन करने में हमेशा प्रवृत्त करते हैं। तो ये मूर्ति हमने देखा है, मूर्ति कई मूर्ति हमसे दिव्य व्यवहार करते हैं, भाव ग्राही जनार्दन। जैसे साउथ इंडिया में पहले तो वृंदावन में गोपाल थे, तो उनने सागपुरी साक्षी, तो यंग ब्राह्मण उनको साउथ इंडिया तक चला के ले जाता है और साक्षी पुरते हैं। मूर्ति कहती है ब्राह्मण को वृंदावन में कि मैं तो मूर्ति हूं, मैं कैसे चलूं? तो ब्राह्मण कहता है, लॉजिक से भगवान को हरा देता है, इफ यू कैन टॉक देन यू कैन वॉक ऑल्सो। आप अभी बोल रहे हो, मूर्ति होके बोल रहे हो, तो आप चल भी सकते हो। तो हार गए भगवान गोपाल, और गोपाल कहते हैं ब्राह्मण को, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ, मेरे घुंघरू से आपको पता चलेगा मैं आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पीछे देखोगे मैं वहाँ स्थित हो जाऊँ। तो विद्यानगर तक गए साउथ इंडिया वृंदावन से। तो अगर मूर्ति थी तो साउथ इंडिया तक चल के गई कैसे? अगर वो खुद गोपाल नहीं थे तो चलने के बिना गई कैसे? अगर नहीं चल के गई, घुघरू का आवाज आता रहा, लेकिन वहाँ वृंदावन से अंतर्ध्यान होके वहाँ तिरोभाव कैसे हुआ? तो वहाँ अवतरित कैसे हुए? वहाँ मौजूद कैसे हुए? तो ये मूर्ति का ही उदाहरण है। सनातन गोस्वामी अपने हाथ से मदन मोहन को बाटी खिलाते थे, अपने हाथ से बनाते थे बाटी और उनको, और मदन मोहन भी अपने हाथ से वो बाटी उनके हाथ से लेते थे और उनके सामने भोग लगाते थे। तो अगर वो मूर्ति पत्थर है तो भोग कैसे लगाया? तो ऐसे कई उदाहरण भागवत में, दुर्गा की मूर्ति जब उनके भक्त जड़ भरत महाराज का बलि चढ़ाने वाले थे माँ को, तो माँ की मूर्ति देवी मूर्ति फट गई और उसमें साक्षात देवी उत्पन्न हुई। तो मूर्ति में देवी नहीं थी, मूर्ति मंत देवी नहीं थी, तो उनने खड़ग लेके उनके भक्तों का व्रत कैसे किया? वैष्णव का वो बलि चढ़ाना चाहते थे, इसलिए वैष्णवी है माता वैष्णवी। विष्णु की भक्त वैष्णवी, इसीलिए देवी को अच्छा नहीं लगा, तो मूर्तिमंत होके सबकी हत्या की। जड़भरत महाराज वैष्णव थे, इसलिए मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो मूर्ति पूजा में वो प्रवृत्त रहते थे। आर्य समाज जैसा मंतव्य गलत मंतव्य है, मूर्ति पर एक चूहा खेल रहा है तो ये भगवान नहीं है। क्या पता चूहा भगवान का बहुत प्यारा हो, हमें क्या पता, और भगवान उनसे खेलना चाहते हैं या तो उनको अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, तो ये भगवान की मर्जी। लेकिन हम भगवान की मूर्ति को पत्थर कैसे समझे। जैसे मैं एक जगह प्रचार करने गया था तो ऐसी तरुणी कन्या थी, मैं भी 14-15 साल, तो मैं उनके पिताजी का पिक्चर वहाँ पड़ा था, पिक्चर फोटो, तो मैंने उनको कहा, यही वार्ता चल रही थी मूर्ति की, तो मैंने कहा ये आपके पिताजी का पिक्चर है उसके ऊपर थूको, तो बोल गए तो मेरे पिताजी हैं। तुरंत, ऐसा नहीं कि कुछ सोचने लगी थूकू ना थूकू, तुरंत उन्हें जवाब दिया तो मेरा पापा है। तो वो पिक्चर उनका पापा है कि पिक्चर है, वो समझती है मेरा पापा, मैं नहीं थूक सकती, तो पापा ही है। तो ये भौतिक उदाहरण है, भगवान अणु अणु में रह सकते हैं, कण कण में रह सकते हैं, आपके हृदय में रह सकते हैं, तो क्या पत्थर की मूर्ति में नहीं रह सकते। भगवान का एक स्वभाव है ऑल परवेजिव, अंतर्यामी, अणु अणु में, कण कण में प्रसरे हुए, ऑल परवेजिव, तो क्या मूर्ति में नहीं रह सकते। तो निराकारवादियों की, मायावादियों की भ्रमणा है। भगवान की सृष्टि को आकार, तो जो उनका रचयिता भगवान है उनको आकार नहीं, सृष्टि से वो कम है कि उनको आकार नहीं, सृष्टि को आकार है सब कुछ, खंभा आकार, ये आकार, आकार आपको, आकार मुझे, आकार सबको आकार, और सब कुछ आता है श्री कृष्ण में से, अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ कृष्ण में से आता है। तो क्या कृष्ण इनकी सृष्टि से कम कि उनको आकार नहीं। तो ये है मुकुंद लिंग, मुकुंद की मूर्ति, मुकुंद ही हैज ऑथोराइज बॉक्स है, पिक्चर, पिता का पिक्चर, मेरा पिता है। अमर लीला नित्य नव नव है, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्त करे आस्वादन। हमारा जितना भाव प्रेम है इतना भगवान हमारे समक्ष प्रकट होंगे। नरसिंह मेहता के पास वो 52 बार खुद भगवान आए, द्रौपदी के पास, पांडवों के पास, मीरा के पास, सूर दास के पास, द्वारिकाधीश बोडाणा भक्त के भाव में द्वारिका छोड़ के डाकोर चले गए उनकी बैलगाड़ी में, और द्वारिका के पुजारी ढूंढते ढूंढते डाकोर आए, भगवान को कहते हैं कि चलो यहाँ कैसे आ गए। तो भगवान ने कंडीशन रखी कि जो मुझे खरीदेगा उनके यहाँ मैं रहूँगा, तो मुझे गोल्ड से मेरे बराबर आपको गोल्ड दूसरे तराजू में रखना होगा। तो मूर्ति एक बाजू और दूसरी ओर पुजारी लोग गोल्ड रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, गोल्ड, कितना भी गोल्ड रखा लेकिन भगवान ऊपर नहीं हुए। और बाद में बोडाणा की पत्नी बहुत उच्च कक्षा की भक्त थी, तो उनने अपनी, कुछ था नहीं, गरीब थे, छोटी सी नथनी थी गोल्ड की, तो नथनी इतना ही उनके पास था, सारा भगवान के लिए तराजू में रख लिया। तो नथनी नीचे बैठ गए, भगवान ऊपर चढ़े गए, चले गए। और यह सत्य घटना है, ऐसा नहीं कि सब मूर्ति बना लेते हैं हम कथाएं, ऐसा नहीं है। भावग्राही जनार्दन मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, क्या आप श्री कृष्ण के दर्शन करते हो? आपको उनका साक्षात्कार दर्शन होता है, साक्षात दर्शन होता है क्या? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मदन मोहन जी हैं, मूर्ति को पॉइंट करके, क्या ये दर्शन कृष्ण का दर्शन नहीं है? क्या ये पत्थर का दर्शन है? तो ये ऑथोराइज बॉक्स है, जो भी दर्शन, जो भी सेवा, जो भी करोगे वो पहुंचेगा। इसलिए अमरीस महाराज मुकुंद लिंगालय दर्शने द्रशव, हमेशा मुकुंद भगवान का शिव विग्रह के दर्शन करते रहते थे। अंग संगमम तद भृत्य गात्र स्पर्शे, अंग संगमम तद उनके कृष्ण के, सवय मन कृष्ण, वो कृष्ण तद मीन्स कृष्ण, तो तद भृत्य सेवक या भक्त, भृत्य भगवान श्री कृष्ण का दास, उनको भृत्य कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का गात्र, गात्र का अर्थ है अंग, चरणारविंद, स्पेशली भक्तों का चरणारविंद का स्पर्श करने में उनने अपनी त्वचा लगाई थी, अपने हाथ से भक्तों के चरणों का स्पर्श करना, भक्तों का स्पर्श करना, मूर्ति का स्पर्श करना, तो इसमें उनने अपनी त्वचा को लगाया। ध्यान दो, एकादश इंद्रियों को उनके एकादश कार्यों में, भगवान के कार्यों में लगाया। तो ये त्वचा एक ज्ञानेन्द्रिय है, और वो भक्तों के चरणों को भक्त पद जल, भक्त पद रज, भक्त भुक्त उच्छिष्ट, यही तीन महाबल, भक्तों के पद की रज, भक्तों के पद का जल, भक्तों से उच्छिष्ट, ये तीन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए महान साधन है। भक्ति में ये तीन महाबल पुष्टि देते हैं, धक्का देते हैं भक्ति में, आपको आगे प्रगति जल्दी जोरों से प्रगति कराएगा। ये तीन चीजें, महत पाद रजोभिषेकम, जड़ भरत महाराज रहुगण को कहते हैं कि जब तक कोई महत पाद के रज का अभिषेक नहीं करता, तब तक उनका अत्यंतिक कल्याण नहीं हो सकता। महत पद रजोभिषेकम, खाली भक्तों के चरणों की धूल माथे चढ़ाना नहीं, वो धूल से अभिषेक करना, अभिषेक, महत पाद रजोभिषेकम। तो ये बहुत बड़ा बल है भक्तों का, भक्तों के चरणों की रज, ये बहुत बड़ा साधन है। इसीलिए अमरीश महाराज कहते हैं, क्या करते हैं, तद भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, उनके अंग का संग। तो ये है भक्तों के चरणों की रज, की रज का महात्म्य। नरसिंह मेहता ने एक भजन गाया है, वैष्णव को भगवान को वैष्णव कितने प्यारे हैं, तो उसमें ये आता है, क्या आता है कि अड़सठ तीरथ मर संतन चरण, कोटि गंगा कोटि कसीरे, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, हर निशने गाऊं रे, मारा संतन, मारा भक्त के चरण में। कृष्ण कहते हैं क्या होता है, अड़सठ तीरथ मारा संतन चरण, मेरे संत के चरणों में अड़सठ तीरथ, भारत के सारे तीरथ अड़सठ हैं, भारत के तीरथ अड़सठ तीरथ, तो सारे अड़सठ तीरथ मेरे भक्त के चरण में। इतना ही नहीं, कोटि गंगा मेरे भक्त के चरण में। कितनी गंगा? एक गंगा आपको पवित्र करती, डुबकी लगाओ पाप मुक्त हो जाओगे। तो इतना बड़ा महात्म्य गंगा जी का, और वो कितनी गंगा उनके चरणों में, उनके भक्तों के चरणों में कितनी गंगा? कोटि, करोड़, कोटि गंगा, कोटि काशी, काशी जैसी तीर्थ नगरी, कोटि काशी। तो ये भक्तों के चरणों की रज, उद्धव जैसे महान ज्ञानी, आसाम अहम जुसाम अपिम वा वृंदावने किम अपि गुल्म लता औषधि नाम। मैं भक्तों की रज, स्पेशली गोपियों के चरणों की रज मेरे सर पर पड़े, इसलिए हे कृष्ण मुझे व्रज में गुल्म लता पता मुझे बना दो, ग्रास मुझे, छोटा सा तृण, छोटा सा ग्रास, घास फूस का मुझे जन्म मिले। क्या? वृंदावने किम अपि गुल्म लता औषधि नाम। मैं गुल्म बनूं, औषधि बनूं, मैं ग्रास बनूं। प्रखर ज्ञानी उद्धव, और भगवान का सबसे बड़ा, सबसे प्यारा, सबसे निकट परिकर, सहयोगी, सहचारी, सारूप्य मुक्ति प्राप्य श्री कृष्ण और उद्धव खड़े हैं। तो आपको ये पता नहीं, आपको मुश्किल मुश्किल ही हो जाएगी कि कौन कृष्ण है कौन उद्धव है। एक स्वरूप, और मंत्री थे कृष्ण के, उद्धव जी भक्त थे, कजिन ब्रदर थे, चचेरे भाई का बेटा। तो ये ज्ञानी उद्धव को भगवान व्रज में भेजते हैं, जाओ ये व्रजवासी सब मेरे विरह में कल्पांत कर रहे हैं, रोना नहीं, रोते नहीं है, कल्पांत करते हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदरथे त्यक्त देहिका मयेव दयितम प्रेष्टम आत्मानम मत परायणा मयेव त्यक्त लोक धर्मा तदर्पि बिभर्मी अहम। ता मन मनस्का, भगवान रोते रोते बोलते हैं उद्धव को, जाओ संदेश लेके जाओ मेरा, और सांत्वना दो व्रजवासियों को। ता मन मनस्का, उनका ध्यान मुझ में है, मेरे में मन है, मेरे लिए सारे संबंधी सगा सोई सब छोड़ छाड़ के मेरे विरह में हमेशा वो कल्पांत करते रहते हैं। नंद महाराज, नंद बाबा, जसोदा माता, गोपी, राधा रानी, सब जैसे उनका जान छीन गया, उनमें जान ही नहीं, वैसे विरह में कल्पांत करते। तो उद्धव वहां ज्ञान देने गया, ये गवार न अथ इति, गोपियां अभण थी, अथ नहीं जानती थी, अथ अथ नहीं जानना का अर्थ है ब्रह्म सूत्र अथ से शुरू होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये अथातो का पहली एबीसीडी पहला शब्द ही उनको पता नहीं था, अभण थी। तो उद्धव जी उनको ज्ञान देने के लिए जाते हैं और हार गए वहां, सब कुछ उनका लूट गया, ज्ञान लूट गया, गोपियों के संग में रंग गए। तब ये बोलते हैं ये भाषा कि मुझे गुल्म लता औषधि का व्रज में जन्म मिले, ताकि गोपियों के चरणों की रज मेरे पर पड़े, मैं धन्य धन्य हो जाऊं। तो ये है तद भृत्य गात्र पर्सने अंग संगमम, उनके गात्रों का स्पर्श करना, ये हमारा जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तांदेर चरण सेवी भक्त सन्निवास, जनमे जनमे होय एई अभिलास। तांदेर चरण सेवी, गोस्वामियों के चरण सेवी नहीं, गोस्वामियों के भक्तों के चरणों के सेवी भक्त जन के मैं चरणों की सेवा करूं। ये जन्म जन्मांतर मेरी आस है, ऐसा नहीं एक जन्म में मुझे ये मिले, हर जन्म में मुझे ये मिले। क्या मिले? तांदेर सठ गोस्वामी वृंदावन के रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जय रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छह गोस्वामी, क्योंकि दास के दास के दास के दास को उनकी चरणों की रज का अभिलाषी, तांदेरा चरण सेवी भक्त सन्निवास, उन सठ गोस्वामियों के तांदेरा चरण सेवी, उनके चरणों के सेवी भक्तों के दास का दास में बनूं। ग्रहणम च तत्पाद सरोज सौरभे, और अमरीश महाराज ने ग्रहणम च तत्पाद, ग्रहणम नासिका नाक, तत्पाद सरोज उनके चरण कमलों में, कृष्ण के चरण कमलों में चढ़ाया हुआ सरोज फूल कमल का, उनकी सौरभ लेने में उनकी नासिका प्रवृत्त रखी थी। तुलसी अत्तर फूल हार की सौरभ लेनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सनकादि चार कुमार ब्रह्म में स्थित थे, ब्रह्मलीन ब्रह्म स्थित निराकारवादी थे, लेकिन जब विष्णु के चरणों की तुलसी की सुगंध उनकी द्राण में उनकी नासिका में प्रविष्ट हुई, तुरंत हृदय परिवर्तन, तुरंत तो भगवान का जो उच्छिष्ट फूल तुलसी वगैरह सूंघना चाहिए। तो ये हमारे नाक की परफेक्शन, नाक को इसमें लगाना चाहिए। ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्या रसनाम तद अर्पिते, श्रीमत तुलस्या भगवान के चरणों में भोग लगाई हुई तुलसी को अपनी रसना को देना चाहिए। अमरीश महाराज तुलसी दल ग्रहण करते थे, कृष्ण चरणों से चढ़ाई हुई तुलसी, श्रीमद तुलसिया रसनाम तद अर्पिते पादौ हरेर क्षेत्र पदानु पदा अनुर्पिते, पादौ हरेर क्षेत्र पदानु सर्पणे, पग अपना पग अमरीश महाराज ने कैसे प्रवृत्त किए थे, पादौ हरेर क्षेत्र पदा पदानुसर्पिते, हरेर क्षेत्र का अर्थ है द्वारिका वृंदावन मथुरा जगन्नाथपुरी मायापुर अयोध्या, ये हरि का क्षेत्र है हरेर क्षेत्र। तो पादौ अपने पग से वो भगवान के क्षेत्रों में अपने पग को चलने में प्रवृत्त करते थे, भगवान के मंदिर में जाने के लिए पग का उपयोग करते थे। तो ये पग का सही उपयोग है। भागवत दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय उनमें लिखा है कि अगर पाँव भगवान के क्षेत्र में धाम में तीर्थ में चलता नहीं है तो वो पाँव पेड़ के तना के बराबर है, पेड़ का तना चल नहीं सकता। तो ये पाँव अगर भगवान के क्षेत्र में नहीं चलता है तो वो पाँव पेड़ के तना के बराबर है। अमरीश महाराज ने पाँव को भगवान के क्षेत्र में चलने के लिए उपयोग किया और कोई उपयोग नहीं। गौर अमार से सब स्थाने करिलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो अमी प्रणय भकत संगे, प्रेमाण भक्तों के साथ मैं भगवान के धाम में सब जगह में चलूंगा प्रेमी भक्तों के संग में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप तीर्थ खुद जाओ और भक्तों के संग में जाओ, करोड़ गुना भेद प्रभाव और खुशी आनंद भक्तों के संग में आएगा। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। सिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपना सर ऋषिकेश के चरणारविंद में वंदन करने के लिए लगाया। सर का, हमारे सर का यही उपयोग है, और कोई उपयोग नहीं, बुद्धि और कोई उपयोग नहीं है। ये सर, वो सर सर नहीं है जो भगवान को न झुके। इसलिए भागवत में कहा है कि किरीट जुष्टम, अगर आपका सर किरीट मुकुट से भी शोभायमान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सर भगवान को झुकता नहीं तो वो सर भारम किरीट जुष्टम, भारम ये शरीर पर एक भार है, भार रूप सर है। तो हमारा सर का उपयोग क्या है, भगवान के चरणों में नमस्कार, भक्तों के चरणों में नमस्कार, ये सर का उपयोग है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, प्रणत कामदम प्रणत देहिनाम पापकर्षणम, प्रणत जो सर झुकाता है भगवान के आगे, प्रणत कामदम उनके सब कामनाएं पूर्ण होती है, कृष्ण प्रेम की कामना। गोपी गीत के दो श्लोक है, प्रणत देही नाम पापकर्षणम, कोई देही मनुष्य आपके चरणों में नमस्कार करता है तो उनके सब पाप जल के भस्म हो जाते हैं। तो ये भगवान के चरणारविंद में अपना सर झुकाना चाहिए, कितनी बार, बारंबार बारंबार। और कामम च दास्ये न तु काम कामयया, कामना है, इच्छा है, भगवान के लिए कार्य करने में अपनी इच्छा इंद्रियां रखनी चाहिए, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 2400 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। कामम च दास्ये न तु काम कामयया, भगवान की सेवा में उनकी इच्छाएं लगाई। और यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति, जना आश्रय रति, भगवान के जना, भगवान के हरि जन, वैष्णव जन, तो वैष्णवों में हमारी रति हो। अमरीश महाराज ने वैष्णव जन में रति पैदा की थी, हमें भक्तों के साथ, अमरीश महाराज ब्राह्मण भक्तों के साथ, वैष्णव ब्राह्मणों के साथ। तो इसी तरह अपनी एकादश इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में अमरीश महाराज ने लगाया। एकादश इंद्रियां, हमें कल हमने चर्चा की थी कि 11 इंद्रियां कौन सी है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। 5 ज्ञानेंद्रिय है आँख कान नाक जीभ त्वचा, कर्मेंद्रिय है हाथ पांव, जननेन्द्रिय गुदा और वाणी, और 11वां मन। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो, वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने, श्रुतिम चकर अच्युत सत कथोदये, करो हरेर मंदिर मार्जिनादसु। इसी तरह सारी इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में हमें सेम टाइम लगाए रखते थे। तो हमारा मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी सब इंद्रियां श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा में हमें रत रहे। ये भक्ति की परिभाषा है, नारद मुनि करते, नारद पंचरात्र में क्या कहते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना, कैसे, सर्व उपाधियों से मुक्त होकर, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, बाद में ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हमारी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करना कोई कड़ा काम नहीं है। अगर आपने ठान ली तो कर सकते, नहीं ठाना तो दूसरी जो चीजों में आपका निश्चय है वो चीज होती रहेगी। लेकिन मनुष्य जन्म हमें इसलिए मिला कि सारा मनुष्य अस्तित्व हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए, क्योंकि उनने शरीर दिया, उनने शरीर पैदा किया, उनने हमें पैदा किया। हम जो पैदा, प्रभुपाद जी कहते हैं, हम जो पैदा करते हैं ये हमारे लिए, तो भगवान पैदा करते हैं उनके लिए होना चाहिए कि हमारे लिए होना चाहिए? भगवान पैदा करते हैं तो उनके लिए है, तो भगवान ने शरीर हमें दिया पैदा करके, भगवान ने हमें पैदा किया, तो हम सब उनकी, उनके आनंद के लिए है, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए है। ये शरीर कृष्ण का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगताम जगत एन त्यक्तेन भुंजिथा मा ग्रद कस्य सिद्धनम। ये सब सचराचर भगवान श्री कृष्ण का है, उनने पैदा किया, वो सबका स्रोत है। तो जो भी उनने पैदा किया उनकी खुशी के लिए, उनके आनंद के लिए। हमने कोठी पैदा की हमारे आनंद के लिए, बच्चे पैदा किए हमारे आनंद के लिए, सब कुछ जो पैदा करते हमारे आनंद के लिए। इसी तरह कृष्ण ने सब कुछ पैदा किया तो स्वाभाविक है उनके आनंद के लिए है। तो क्या कृष्ण का नहीं है? सब कुछ, सभी भूमि गोपाल की, सब कुछ सचराचर श्री कृष्ण का है, हमारा शरीर श्री कृष्ण का है। इसलिए हमारे शरीर की एक मात्र, हमारे शरीर का एक मात्र धर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना, उनकी इंद्रियों की सेवा करना। तो इसी तरह अम्बरीश महाराज ने सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई थी। एवं सदा कर्म कलाप आत्मनम परे अधियग्ने भगवत यदोक्षजे सर्वात्म भावम विद्धान महिमा तन्निष्ठ विप्राभित ससास। विप्र ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मणों की सलाह सुजन से वो राज्य करते थे, तो उनने यज्ञ करना ठाना कि भगवान की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं यज्ञ करूंगा। तो इजे अश्व मेघैर धियग्नमीश्वरे ईश्वरम महाविभूत्यो पचितांग दक्षिणै तत्रै वसिष्ठासित गौतम आदिवीर धन्वन्य विस्तोत मसौ सरस्वती। सरस्वती के किनारे उनने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया और ब्राह्मणों को, जैसे कौन से ब्राह्मण है, वशिष्ठ असित गौतम आदि ब्राह्मणों को उनने बहुत मात्रा में दान दिया और यज्ञ संपन्न किया। महाराज अम्बरीश ने यज्ञ संपन्न किया। यस्य क्रतुषु गिर्वाणे सदस्या ऋत्विजो जना तुल्य रूपाश्च निमिषा व्यदस्तंत सुवासस। तो यस्य क्रतुषु गिर्वाणे, तो ऋत्विजों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, सबको अरबजों खरबजों करोड़ों गायों का दान दिया और वो गाय नया बछड़े वाली थी, नया जन्म दिया हुआ, और उनके खुर चांदी से मढ़े हुए थे, उनके सिंह सुवर्ण से मढ़े हुए थे, ऐसी गायें दान में दी। स्वर्गो न पार्थित पार्थितो यश्य मनुजैरम प्रिय सुणवत वीर उरुगायक वीर उत्तम श्लोक चेष्टितम। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमा कार्यकलापों में हमेशा कीर्तन श्रवण आदि में प्रवृत्त रहती थी, हमेशा प्रवृत्त। आज से 50 साल पहले मैं जब छोटा बालक था, 60 years ago, तो गांव में और सारे भारत में कीर्तन और भागवत महाभारत का पाठ हर रोज शाम को मंदिरों में, घरों में आरती, सब कुछ। अभी तो 16 घंटा काम करेगा और पत्नी के पास कोई नौकर चाकर होंगे नहीं, इतनी आमदनी नहीं होगी। अगर आमदनी है तो नौकर चाकर रहेंगे नहीं, नौकरी करने को राजी नहीं होंगे, तो समय कहाँ से मिलेगा। कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी प्रजा होनी चाहिए सुबह और शाम श्री कृष्ण के लिए, और बीच वाला पोर्शन काम के लिए। संवर्धयंती यत कामा स्वराज्य परिभाविता दुर्लभा नापि सिद्धा नाम मुकुंदम हृदय पश्यता। जो लोग भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख के परिपूर्ण है, महान योगी की उपलब्धियां में भी कोई रुचि नहीं रखते, वो भक्त लोग ये बड़ी बड़ी उपाधियां इच्छते नहीं। वो हर रोज क्या करना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण की से अपने शरीर से सेवा। तो ये प्रजा उनकी थी, और ये महाराज अम्बरीश प्रजा से, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, पैसों से विरक्त, सबसे विरक्त विरक्त। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु दीपोत्तमस्यन नवाजी वस्तुषु। दीपोत्त बड़े बड़े बलवान हाथी, वाजी घोड़े, और क्या अक्षय रत्न आभरण अंबरादिश्व। अक्षय नहीं खुटने वाला, असीम रत्न आदि आभरण, ये सबसे क्या था? अनंत कोशेश्व, कई अनंत कोश, लश्कर, बड़ा आर्मी, बिग आर्मी। ये सबसे वो विरक्त थे, आसक्ति छोड़ दी। ये सब में उनने, महाराज अम्बरीश ने आसक्ति छोड़ दी। तो इसीलिए ये अम्बरीश महाराज को आत्मनिवेदी भक्त कहते हैं, आत्मनिवेदी। बलि महाराज को आत्मनिवेदी भक्त कहते हैं। अपना सारा जो भी मन शरीर यत वाक काय मानस सब कुछ भगवान के लिए अर्पित, अपने लिए कुछ नहीं। इसलिए अम्बरीश महाराज को आत्मनिवेदी भक्त। ऐसे आत्मनिवेदी भक्त के घर दुर्वासा मुनि आते हैं, एकांत भक्ति भावेन, एकांतिक भक्ति। एकांतिक भक्ति सर्वोत्तम भक्ति। अम्बरीश महाराज एकांतिक भक्त थे। तो एक दिन क्या हुआ कि आरिराध ईशु कृष्णम महिष्या तुल्यशीलया युक्त सांवत्सरम वीरो दधार द्वादशीम व्रतम। तो एक दिन क्या हुआ कि महाराज अम्बरीश ने अपनी सुयोग्य रानी के साथ भगवान कथा की पूजा करके करने के बाद एकादशी व्रत, एकादशी द्वादशी व्रत करने का निर्णय लिया। एकादशी और द्वादशी का व्रत करने का निर्णय लिया। सो व्रतांते, व्रत के अंत में एकादशी पूर्ण हुई, द्वादशी शुरू हुई सुबह करीबन 8:30 बजे 9 बजे प्लस और माइनस 1.5 आवर। तो ये मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करना होता है, व्रत तोड़ना होता है। तो क्या हुआ यहाँ? व्रतांते कार्तिके मासी, कार्तिक मास में व्रत के अंत में त्रिरात्रम समुपोषित स्नात कदाचित कालिंद्या हरिम मधुवनेर चर्यत। कालिंदिया, कालिंदी जमुना, जमुना के तीरे मधुवन में ये एकादशी कार्तिक महीने में ये व्रत करने के लिए अम्बरीश महाराज अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। कार्तिक महात्म्य, कार्तिक मास का बहुत बड़ा महात्म्य है। कार्तिक में वृंदावन मथुरा जाना ही चाहिए, स्पेशली आखिरी 5 दिन भीष्म पंचक या भाई दूज, जमुना में भाई बहन स्नान करें विश्राम घाट पर। तो कार्तिक मास व्रतांते कार्तिक मासी त्रिरात्रिम समुपोषित स्नात कदाचित कालिंद्याम हरिम मधुवने अर्चया। मधुवन में गए तो मधुवन में गए, वहाँ व्रत किया और वहाँ जब द्वादशी आई मधुवन में कालिंद्या कालिंद तटे जमुना तटे, तो अम्बरीश महाराज ऐसे व्रत पारण करने ही जा रहे थे, उनका जो व्रत था वो तोड़ने जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, तमान अतिथिम भूप तम आनर्व अतिथिम याचे व्यवराय पादमूल उपागत। दुर्वासा मुनि अतिथि बन के वहाँ आते हैं, दुर्वासा मुनि अतिथि, कोई उनका आगमन का कोई शंका या कुछ आऊंगा ऐसे कोई फोन कॉल नहीं था, अतिथि। तो दुर्वासा मुनि आए तो महाराज अम्बरीश ने क्या किया, तुरंत महाराज अम्बरीश प्रसन्न होके खड़े हो गए और उनको प्रार्थना की। अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि आप का मैं स्वागत करता हूँ और आप ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, द्वादशी व्रत का पारण कीजिए। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं अभी ही ब्राह्मणातीत क्रमे दोषे मुहूर्ताम आविष्ट्याम द्वादश्याम पारणम प्रति चिंतयामास धर्मेज्ञो द्वैजैस्त अधर्म संकटे। दुर्वासा मुनि कहते हैं मैं जमुना में स्नान करके आता हूँ, मेरा जो मंत्र जप है गायत्री वगैरह करके मैं आता हूँ, बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो दुर्वासा मुनि को देर लग गई और जो मुहूर्त होता है पारण करने का जो समय होता है उसमें आधा घंटा बच गया। तो दुर्वासा मुनि की आने की कोई संभावना नहीं थी, तो व्रत सफल करने के लिए अम्बरीश वैष्णव ब्राह्मण भक्तों को पूछते हैं, उनके उनके सलाह सुजन से ही वो राज्य करते थे, ब्राह्मणों के, ब्रह्मवादी ब्राह्मण नहीं वैष्णव ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मणों को सलाह सुजन लेते हैं, तो ब्राह्मण कहते हैं कि आप पानी ग्रहण करो, तो प्राणी ये पानी ये खाने के बराबर है और उपवास के बराबर भी है, नहीं खाने बराबर भी है, क्योंकि पानी में कोई फूड वैल्यू नहीं, कोई फूड वैल्यू नहीं है, इसलिए वो खाने के बराबर नहीं है। लेकिन पानी अंदर जाएगा तो कुछ खाया, चाहे पानी हो चाहे कुछ हो, नरोवा कुंजरोवा जैसी परिस्थिति, व्रत का पारण भी हुआ, व्रत का पारण नहीं भी हुआ, व्रत तोड़ा और व्रत नहीं भी तोड़ा। तो ब्रह्म ब्राह्मण दुर्वासा मुनि जब वापस लौटे तो अपनी ब्रह्म विद्या से दुर्वासा मुनि समझ गए कि अम्बरीश महाराज ने उनके आतिथ्य सत्कार का भंग किया और अतिथि को मेहमान को खिलाने के पहले ही खा लिया। दुर्वासा मुनि को बहुत बड़ा क्रोध हुआ, उनकी ब्रकुटी ऊपर चढ़ गई, आंखें बड़ी हो गई और हाथ ऊपर हो गए और बहुत बड़ा गुस्सा करने लगे, और गुस्से में ही अपने सर के बाल में से एक कृत्या एक डीमनेस राक्षसी पैदा की, क्यों, अम्बरीश को मारने के लिए। बहुत बड़ा कहते हैं यहाँ बहुत बड़ा घमंडी सार्वभौम राजा हो गया, सारे भौम का राजा है इसलिए बहुत अहंकार है वगैरह वगैरह गालियां देते हैं दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि कृत्या पैदा करते हैं और कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने ही जा रही थी, इतने में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र प्राग्निष्टम भृत्य रक्षायाम पुरुषेण महात्मना ददा कृत्याम त्वाम चक्रम कृंदा ही मेव पावक। तो प्रागणी भृत्य रक्षायाम अपने भृत्य सेवक वैष्णव अमरीश महाराज की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही ये सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में उनके संरक्षण में उनकी रक्षा के लिए भगवान ने वहाँ छोड़ा था। तो जब ये दुर्वासा ने कृत्या पैदा की राक्षसी अमरीश को मारने के लिए, तुरंत ये सुदर्शन चक्र वो कृत्या को मार दिया, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार दिया, राक्षसी को मार दिया, और बाद में वो दुर्वासा मुनि के पीछे चक्र पड़ा। तो दुर्वासा मुनि इतने आगे और चक्र इतना पीछे, तो दुर्वासा मुनि भागते हैं। कहाँ भागते हैं ये लिखा है यहाँ कि वो गुफा पर्वत की गुफा में दिशो नभो क्षाम विवरान समुद्रान लोकान सपालाम त्रिद्विगम गतास यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श। सब दिशाओं में भागने लगे, नभ आकाश में भागने लगे दुर्वासा, श्याम पृथ्वी पर भागने लगे, विवरान छेदों में, समुद्रान समुद्रों में भीतर दुर्वासा मुनि भागने लगे, लोकान सारे स्थानों में, सब पालान तथा उनके शासकों के समेत, त्रिदिवम स्वर्गलोक में आगत वो गए, माउंट मेरू आगे लिखा है, माउंट मेरू की गुफाओं में वो दुर्वासा मुनि भागने लगे। तो ये चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, जहाँ भी भागे वहाँ चक्र पीछे उनको मारने के लिए। तो दुर्वासा मुनि बाद में अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ के ब्रह्मा ये सत्य लोग सबसे ऊंचा लोग तक दुर्वासा की पहुंच हुई, तो वहाँ भी सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है। तो ब्रह्मा जी के पास दुर्वासा मुनि आते हैं सोच समझ के कि ब्रह्मा ये ब्रह्मांड के रचयिता, वेरी पावरफुल पर्सनालिटी, तो ये मुझे छुड़ाएंगे। तो ब्रह्मा कहते हैं, श्री ब्रह्म उवाच स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपार्ध संगने भ्रू भंग मात्रेण ही संधि दक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। तिरो भविष्यति, तिरो भाव होता है ये ब्रह्मांड का, मेरा भी मृत्यु होता है, और मैं ये जब भगवान लीलाएं संपन्न करते हैं तो उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी करके सारे ब्रह्मांड को वो नाश कर देते हैं विष्णु कृष्ण, और कहते हैं कि मेरा भी विनाश होता है, मैं तथा शिव जैसे महापुरुष तथा दक्ष भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक एवं देवताओं के शासक, हम सभी उन भगवान विष्णु को कृष्ण को अपने अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। तो ये विष्णु कृष्ण का सुदर्शन है और हम उनके भृत्य हैं, हम उनके सेवक हैं, उनकी मर्जी से हमारा नाश होता है। ब्रह्मा का, लोकपालों स्वर्गीय सब लोगों का, पृथ्वी के पाताल के पितृ सब का नाश होता है। तो ये भगवान विष्णु कृष्ण के सुदर्शन से मैं आपको नहीं बचा सकता, इसीलिए आप क्या करो, आप ये शिव जी का शरण लो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सदैव निवास करने वाले कैलाश में सदैव निवास करने वाले शिवजी दुर्वासा शरणम यातः सर्वम कैलासम कैलाश वासिनम शंकर कैलाश में वास करने वाले। तो ध्यान दो, ब्रह्मा ये ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड भेद के बाहर निकलोगे और अनंत कोटि ब्रह्मांड आपको दिखाई देंगे, भौतिक अनंत कोटि ब्रह्मांड। और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऊपर विरजा नदी कॉजल ओशन कारणोदक समुद्र है, और कारणोदक समुद्र के उस पार, इस पार भौतिक जगत, उस पार आध्यात्मिक जगत। शुरुआत होती है ब्रह्म ज्योति से, भगवान श्री कृष्ण की आभा प्रभा तेज, तेज का पुंज, ये ब्रह्म ज्योति है। तो ये ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये भौतिक जगत की बाद में विरजा या तो कॉजल ओशन विरजा नदी या कारण समुद्र, एक ही बात है, विरजा और विरजा के उस पार ब्रह्म ज्योति, भगवान श्री कृष्ण की निराकार स्वरूप ब्रह्म ज्योति, तेज उनका। और ब्रह्म ज्योति के ऊपर कैलाश है, माउंट कैलाश। माउंट कहते हुए बड़ा बड़ा कैलाश विस्तार है, धाम है, बड़ा धाम है, बहुत बड़ा धाम। तो वहाँ कैलाश पर शंकर भगवान रहते हैं, तो वहाँ ये आए। तो शंकर उवाच, श्री शंकर उवाच, तो शंकर भगवान अभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वयम न तात प्रभावाम भूमि, वयम न तात, हे पुत्र मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांता धारण करके कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते हैं, ब्रह्मा और अन्य देवताएं, इंद्र चंद्र सूर्य वरुण अग्नि वगैरह वगैरह कई देवताएं अपनी अपनी ब्रह्मणा से यहाँ जन्म मृत्यु की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों में चलते रहते हैं। शंकर बोलते हैं, शंकर भगवान, भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों की उत्पत्ति और संहार होता रहता है। तो ये देवताएं, सब देवताएं श्री कृष्ण से क्या करते हैं, स्पर्धा, मैं भगवान हूँ, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम, बलवान सुखी। तो ये सब देवी देवताएं, ब्रह्मा तक के देवी देवताएं सब का मृत्यु है, सब दुखी हैं। इसलिए तो जब देवताएं दुखी होते हैं तब क्षीर सागर के किनारे पे जाके पुरुष सूक्त से भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, आप अवतरित हो, हम बहुत दुखी हो गए, राक्षसों ने हमारा राज्य छीन लिया, हम आपकी भक्ति नहीं कर सकते। तो भगवान अवतरित होते हैं और देवों का सम्मान करके देवों को राज्य, जो राक्षस ले लेते हैं, बलि महाराज का छीन लिया, हिरण्यकशिपु का छीन लिया और देवताओं को दिया। तो ये सब देवतागण को जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, देवों को पूजने वाले ब्रह्मांड में ही रहते। तो दुर्वासा मुनि की पहुंच कहाँ तक हुई, विरजा के उस पार आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया और कैलाश चले गए, और कैलाश भगवान शंकर को वो प्रार्थना करते हैं। तो शंकर कहते हैं उस दुर्वासा को, क्या कहते हैं दुर्वासा को शंकर, कि हम सब ये देवी देवताएं, ब्रह्मा से लेके सब देवी देवताएं ये श्री कृष्ण के भृत्य हैं, दास हैं, सेवक हैं। और बाद में कहते हैं कि अहम सनंत कुमारश्च नारदो भगवान अज कपिलो आपांतरतमो देव देवलो धर्म आसुरी मरिचि प्रमुखा प्रमुखाश्चन्य सिद्धेशः पारदर्शना विदाम्न वयम सर्वम यन मायाम मायया वृता तस्य विश्वेश्वर स्वेदम शास्त्रम दुर्विशहम हिना तमेव शरणम याहि हरिस्तेसम विदास्यति त्वमेव सर्वम। ये सब हम सब शंकर ब्रह्मा सनंद कुमार नारद भगवान ज ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा कपिल मुनि व्यासदेव देवल यमराज महान संत आसुरी मरीचि प्रमुख देवी देवताएं सिद्ध ईशा जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है ये सब सारे क्या करते हैं विश्व ईश्वरीयस्य शरणम याहि हरि ही ते सम विश्वास्यति वो हरि के शरण में हम जाते हैं। हम सब ब्रह्मा शिव श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं इसीलिए उनको शिक्षा देते हैं शंकर भगवान कि आप वो भगवान के शरण में जाओ। कौन से भगवान? तत्पश्चात शिव जी के द्वारा भी शरण न दिए जाने से निराश होकर दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम गए जहाँ भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। सो कैलाश के ऊपर धाम है वैकुंठ धाम विष्णु का धाम विष्णु भगवान कृष्ण अलग है कृष्ण कृष्ण का धाम वैकुंठ से ऊपर गोलोक ये कृष्ण का धाम है गोलोक ब्रह्मपुर भी कहते हैं और एक गोलोक के मध्य में वृंदावन धाम है जहाँ कृष्ण रहते हैं। तो ये वैकुंठ तक दुर्वासा गए तो दुर्वासा कितने बड़े योगी होंगे कि वैकुंठ तक कैलाश के ऊपर वैकुंठ आध्यात्मिक जगत में स्वइच्छा से प्रवेश किया दुर्वासा ने। तो ये दुर्वासा ब्रह्म के भक्त थे निराकार के भक्त थे ज्ञानी थे ब्रह्म दंड ऐसा शब्द उपयोग किया गया ब्रह्म और ब्रह्मनिष्ठ जब जमुना में स्नान किया बाद में वो ब्रह्म में तल्लीन शब्द का उपयोग किया है। तो वैकुंठ आध्यात्मिक जगत वहां तक अपनी योग शक्ति से दुर्वासा पहुंचे भगवान के पास बहुत बड़ा योग शक्ति। तो भगवान को वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं दुर्वासा और कहते हैं हे प्रभु अजानताते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम विदेही तस्या पचिति विदात मुच्चेत यन्मयदिति नारकोपि। हे प्रभु हे अनंत हे परम नियंता मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया है कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा लें। आप हर काम कर सकते हैं क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हो। तो कौन बोल रहे हैं? दुर्वासा। किसको बोल रहे हैं? श्री कृष्ण को विष्णु को कि आप इतने कृपालु हो कि कोई नरक में भी जाता हो तो उनको आप आपका नाम देते हो ताकि वो नरक में से बच जाए। तो ऐसे हे प्रभु मुझे भी ये सुदर्शन चक्र से बचा लीजिए ऐसी प्रार्थना की। तो बाद में श्री भगवान उवाच बहुत सुंदर भाव भगवान प्रदर्शित करते हैं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ही भगवान कहते हैं किसको, दुर्वासा को, कि मैं भक्त से पराधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो ही, अस्वतंत्र इव द्विज, मैं मेरे भक्तों से अस्वतंत्र हूं, मेरे भक्त मुझे बांध सकते हैं, और साधुवीर ग्रस्त हृदयो, मैं साधुओं के हृदयों की गिरहा में बद्ध हो जाता हूं, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय, भक्तैर भक्त जनप्रिय, मुझे मेरे भक्त प्रिय है और भक्त के भक्त भी मुझे प्रिय है, भक्तैर भक्त जनप्रिय, अहम भक्त पराधीनो ही, मैं भक्तों से पराधीन, भक्त मुझे बांधते हैं, बांध सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के पास अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, भगवान भक्तों से छोटे बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद गाते हैं, नरसिंह मेहता की कृति है, क्या गाते हैं, प्राण थकी मुने वैष्णव वहाला, अहर निश एने गाऊ रे, तप तीरथ वैकुंठ पद मुखी, मारा भक्तो बोलावे त्या हूं जाऊ रे। हे जो नरसिंह मेहता की कृति है, काव्य है, भजन है, ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में से, जहाँ भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, हमारा भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है वो कितना ऊंचा है, कहते हैं मुझे आपकी तरह, उद्धव को, अपने भक्त उद्धव को श्री कृष्ण 11वें स्कंद में कहते हैं कि मुझे आपकी तरह ये सब प्रिय नहीं है जितना आप मुझे प्रिय हो, कौन प्रिय नहीं है, न यथा मे प्रियतम आत्मभू न संकरो, आत्मभू का अर्थ है ब्रह्मा, भगवान कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा मेरा पुत्र, ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु से हुई, तो न यथा मे प्रियतम आत्मभू न संकरो, मुझे शंकर भी प्रिय नहीं है जो मेरा विस्तार है, न शंकर सणो, मेरा भाई बलराम भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, न श्री भीर, मेरी पत्नी श्री लक्ष्मी भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है, नैवात्मा आत्मा, नैवात्मा मुझे मेरा आत्मा भी इतना प्रिय नहीं है यथा भवान, जितना मेरा भक्त प्रिय है, जितना मुझे आप जैसे भक्त, उद्धव जैसे भक्त प्रिय है, इतना मुझे मेरा आत्मा भी प्रिय नहीं है, मेरी पत्नी लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है, मेरा पुत्र ब्रह्मा भी प्रिय नहीं है, मेरा विस्तार शंकर भी प्रिय नहीं है, मुझे नहीं प्रिय है, मेरे भक्त जितने प्रिय हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों से पराधीन हूं। और आगे ये श्लोक उद्धव को आगे कहते हैं भगवान, कितना सुंदर भाव है भगवान का भक्तों की ओर, कहते हैं कि मुनिम शांतम समदर्शना अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुएत्य अंग्री रेणु भी, ये श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद 14वां अध्याय और 15वां 16वां श्लोक, भगवान क्या कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, शांत भक्त हैं, मुनि, जो मुनि भक्त हैं, मुनि का अर्थ है मेरा चिंतन करने वाला, मुनि चिंतन, भगवान का चिंतन करने वाला भक्त, मई अर्पित मनोबुद्धिर भक्तिमान में प्रिय नरह, तो ऐसे जो भक्ति हैं, शांत भक्त हैं, मुनि भक्त हैं, समदर्श है, भक्त क्या है, समदर्श, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी ही तरह सर्व जीवों को सम्मान देते हैं भक्त, समदर्श विद्या विनय संपन्न वगैरह वगैरह, समदर्श भक्त। तो ऐसे भक्तों के पीछे पीछे अनुव्रजाम्य हम, अनु अनुगमन, अनु पीछे पीछे चलना, अनुव्रजामी व्रजामी चलना, व्रजामी का अर्थ है व्रज, व्रज का अर्थ है गायें चराने के लिए जाना, व्रज व्रजामी चलना। अनुव्रजामी अहम नित्यम, क्यों मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, ऐसे शुद्ध भक्तों के, आपकी तरह आपके जैसे शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे मैं क्यों चलता हूँ। अनुव्रजामी अहम नित्यम पुए यत्य अंग्री रेणु भी, उन भक्तों के चरणों की रेणु से मैं और मेरा सब पवित्र हो जाए, इसलिए मैं ऐसे भक्तों के, मेरे भक्तों के पीछे पीछे। अहम भक्त पराधीनो, मुझे नहीं जाना फिर भी मैं खींचते हुए वहां चला जाता हूँ। अहम भक्त पराधीनो ही, मैं भक्तों से पराधीन हूँ। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, अहर निशय अने गाऊं रे, रात दिन मैं गाता हूँ। क्या गाता हूँ, कौन बोलते हैं, कृष्ण। क्या गाता हूँ मैं, कि मेरे प्राण से भी मेरे वैष्णव मुझे प्रिय है। तप तीरथ वैकुंठ पद मुकी, मारा भक्तो बोलावे त्या हूँ जाऊ रे। तप तीरथ वैकुंठ मारू मेरा धाम, सब कुछ छोड़ छाड़ के जहाँ मुझे मेरे वैष्णव बुलाते हैं वहां मैं भागते हुए जाता हूँ। गजने कारण पाड़ो रे धायो, संतो नी करवा सर रे, ऊंचा नीच हूं तो कई न जानो, मुने बजे मरा रे प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, अहरनिश एने गाऊं रे। गजने कारण, गजराज हाथी घड़ियाल ने उनको पकड़ा, युद्ध हुआ कई दिनों तक, तो बेवश परवश होके गजराज ने भगवान को पुकारा और एक कमल अपनी सुन में लेके भगवान को अर्पित किया। तो भगवान कहते हैं कि मैं धायो, धायो का अर्थ है मैं जो भी करता था छोड़ छाड़ के तुरंत भागा, धायो धानस ये हिंदी वर्ड भी होगा, धायो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान तुरंत भागे। हाथी गजराज की, गजेंद्र की सहायता करने के लिए भागे भगवान, और जाके घड़ियाल का सुदर्शन चक्र से सर काट दिया। संतों ने करवा सार, संतों की भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं हमेश तत्पर रहता हूँ। अहम भक्त पराधीनो ही, सर्टनली ही भगवान भक्तों से पराधीन है। तो कहते हैं ऊंचे नीचे हूं तो काई न जानू, मुने भजे महारा रे, मैं ये नहीं जानता कि ये प्राणी गजराज हैं, या तो ये मनुष्य हैं, या तो ये देव हैं, देमीगाड़ हैं। मैं ऊंच नीच काई न जानू, मैं ऊंच नीच कुछ जानता नहीं, मुझे जो बसते हैं वो मेरे हैं, चाहे भंगी हो ब्राह्मण हो कोई भी हो। मुने भजे महारा रे, लक्ष्मी जी अर्धांगण मारी, पण मारा संतनी दासी रे। लक्ष्मी जी मेरी अर्धांगना है लेकिन मेरे भक्तों की वो दासी है। अड़सठ तीरथ मारा संतन चरणे, कोटि गंगा कोटि कसीरे। जी कोटि गंगा कोटि काशी और 68 तीर्थ मेरे संत के चरणों में, तो ये मेरे भक्त हैं, वो मुझे उनकी ओर खींचते हैं। कृष्णा आकर्षिणी च, शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण को भक्त की ओर परवशता से खींचती है। भगवान मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जैसे सांप सपेरा मंत्र मुग्ध कर लेता है, बाद में सांप को वो जो भी कहेगा वो करेगा, मंत्र मुग्ध उनको, अपने सांप अपने आप में नहीं रहता। उसी तरह भक्त, भक्त का प्रेम, भक्त भक्त की प्रेम, भक्त वात्सल्यता भगवान को मंत्र मुग्ध कर देती है। मंत्र मुग्ध अमरी स राजा मुने अति गण वाला दुर्वासाए मन भंग कि दूरे मैं मारू अभिमान त्यजी ने चक्र सुदर्शन वाणी लिदूरे ये प्राण थकी मुने वैष्णव वाला गौरे। अमरीश राजा मुझे अतिशय प्रिय है और दुर्वासा ने मेरा मन भंग किया, मैं मेरा अभिमान त्यज के ये चक्र सुदर्शन उनकी रक्षा के लिए रखा। तो भक्त वत्सलता है भगवान की। अहम भक्त पराधीनो, भक्त भगवान को पराधीन बना देते हैं, भक्त भगवान को पराधीन। और देखो एक कृति में सुंदर कृति है कि कितने भगवान पराधीन हो जाते हैं। कहते हैं कि बैठा गाय तो संत चाले तो हूँ आगड़ चालू, संत सुवे तो हूँ जागूरे, बैठा गाय तो हूँ उबोरे सांबड़ू, उबा गाय तो हूँ नाचूरे। तो जब भक्त चलते हैं तो उनके आगे आगे मैं चलता हूँ, क्यों? उनकी रक्षा के लिए। जब भक्त सोते हैं तो मैं जागता हूँ, क्यों? उनकी रक्षा के लिए। ये कुरुक्षेत्र में हम बैठे हैं तो कुरुक्षेत्र में रात युद्ध के बाद रात में पांडवगण खर्राटा भर रहे हैं, सो रहे हैं, अर्जुन थक गए हैं युद्ध से और भगवान भागा दौड़ी कर रहे हैं। रात को द्रौपदी को कहते हैं आप भीष्मदेव को पास जाओ वरदान लेने के लिए, रात में उठाते हैं द्रौपदी को, दुर्योधन की पत्नी जाएगी अमरता लेके आएगी दुर्योधन के लिए, आप जाओ अखंड सौभाग्यवती भव। भगवान जागते हैं द्रौपदी को लेके जाते हैं, पांच बाण भीष्मदेव पांचों पांडव को मारने ही वाले थे, ये प्रण लिया था, दुर्योधन उनको चढ़ाता है तो प्रण लिया भीष्मदेव ने मार के ही रहूंगा, तो पांच बाण के लिए भगवान रात को दौड़ धाम कर रहे और कुंती को लेके जाते, कुंती को लेके जाते हैं और वो माख बन के बैठते बाण पर और वो उठा लेती है और भगवान सारी रात भाग दौड़ भाग दौड़। संत चाले तो हूँ आगड़ चालू, संत सुवे तो हूँ जागूरे, मारा रे संतनी निंदा करे तेनी जीवाज संग कापूरे। मेरे वैष्णव की मेरे भक्त की कोई निंदा करता है तो उनकी जीभ में काट लेता हूँ। कृष्ण कह रहे अहम भक्त पराधीनो ही, मैं भक्त से पराधीन हूँ। ये यथामाम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजामि अहम् माम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जो मुझे जो भाव से भजते हैं मैं उनको वो भाव से भजन करता हूँ, रिवॉर्ड देता हूँ उनको, मैं लौटाता हूँ। लेकिन गोपियों के सामने भगवान ये प्रॉमिस नहीं रख सके, भजामी हम। भगवान हार गए, परवश हो गए, गोपियों के ऋणी बन गए। न पा रहे हम निर्वध्य संयुताम ससाधु स्वसाधु कृत्यम विबुधा आयुषाम अपिम वा यामा भजन निर्जर गृह श्रृंखला समृच्य समृच्य छोड़ दिया श्रृंखला विभर्मी हम। न पा रही हम आपके प्रेम का बदला मैं नहीं चुका सकता, इसलिए आपका साधु कृत्य आपकी मेरी और जो भक्ति है वो भक्ति ही आपके प्रेम का बदला हो। मैं नहीं चुकाऊंगा, मैं नहीं चुका सकता, मैं ट्राई करूं, मैं प्रयत्न करूं। क्या प्रयत्न करूं? विबुधाम आयुषाम अपिम वा, ब्रह्मा का अरबजो कोटि 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 वर्षों का उनका आयुष ब्रह्मा का, तो ऐसे कई ब्रह्माओं का आयुष्य मिला के मैं प्रयत्न करूं आपके प्रेम का बदला चुकाने का, फिर भी मैं आपका ऋणी ही रहूंगा। अहम भक्त पराध, मैं आपसे पराधीन ही रहूंगा। गोपियों से भगवान पराधीन रहे। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, हमेशा गुलाम रहे। वहां राधा रानी के ऊपर कभी श्री कृष्ण ने हो पाए, कभी भी। श्रृंगार व्रत में श्रृंगार किया, कंधे पे राधा रानी को लिया, क्या क्या नहीं किया भगवान ने राधा रानी की। ये हम भक्त पराधीनो ही, मैं भक्तों से पराधीन हूं, मेरा बस नहीं चलता। तो आधी कथा हुई आज की, आधी कल करेंगे।